शांति। राजयोग की प्रयोगशाला का 30 दिवसीय योग भट्टी साधना का आज 10वां दिन है। तो आज हम देखेंगे कि आज की साकार मुरली में से हमने 3 बातें निकाली है, उस पर चर्चा करेंगे कि रावण ने सीता माता को चुराया और लंका में ले गए और उस बात को लेकर के युद्ध की बात आगे आ गई। लेकिन लंका में जाने के लिए बहुत विशाल समुद्र पार करके जाना था, तो प्रभु रामचंद्र को चिंता हुई कि इतने सारे अपनी वानर सेना लेकर लंका में कैसे पहुंचे। तो फिर उसने समुद्र देवता की प्रार्थना की कि हमें समुद्र से रास्ता दीजिए। तो फिर उसने बोला समुद्र देवता ने कि आपके वानर सेना में एक नल और नील 2 वानर है, यदि उन्होंने पत्थर पर राम नाम लिख दिया और वो पत्थर समुद्र में डाला तो डूबेंगे नहीं, तर जाएगा और इस प्रकार के सेतु बनेगा और उससे आप लंका पहुंच सकते हैं। फिर वैसा ही किया, वो नल नील क्या करते थे, पत्थर पर राम नाम लिखते थे और वो सब डालते थे, फिर वो तैर जाता था। इस प्रकार वो सेतु निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो सभी उमंग उत्साह के साथ कर रहे थे। तो फिर ये सब दृश्य देख करके प्रभु रामचंद्र को भी थोड़ा उमंग आ गया कि सभी सहयोग कर रहे, फिर मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और वो डालने के लिए गए, लेकिन उसके पहले उसमें अंदर संकल्प आया कि प्रभु रामचंद्र तो मैं स्वयं भी हूँ, फिर मुझे नाम लिखने की क्या जरूरत है। तो फिर वो पत्थर उठाया उसने और डाला, लेकिन वो तैराने वो डूब गया, क्योंकि बाकी उसके नाम लिख करके डालते थे वो तैर जाता था और प्रभु रामचंद्र ने डाला तो वो तैराने डूब गया। क्यों डूबा होगा जी? नहीं, भगवान को तो एक उसको तो भगवान समझते हैं, प्रभु थे, उसको तो अभिमान ही आएगा। हाँ, उससे उसका नाम बड़ा है, ये भी एक बात हो सकती है। तो आज के साकार मुरली में बाबा ने बताया है कि बाबा समर्थ होते हुए भी, यानी यज्ञ में जो विघ्न पड़ते, विघ्न क्यों पड़ती है, तो उसके इसमें बाबा ने 3 बातें बताई है कि जवाब में। कि पहली बात बताई बाबा ने कि भगवान भला है, समर्थ है, क्योंकि ये बात हर एक की होती है, क्योंकि सभी का यही क्वेश्चन रहता है कि भगवान इतना समर्थ है और ये यज्ञ भी उन्होंने स्थापन किया है, लेकिन इस यज्ञ में इतने विघ्न क्यों पड़ती है। तो उसके जवाब में बाबा ने जवाब दिया, उत्तर क्वेश्चन में जवाब दिया पहला कि जो ड्रामा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा भी वो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है और ड्रामा में जो नूंद है उसी अनुसार भगवान को भी यानी कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए वो प्रभु रामचंद्र ने पत्थर डाला मगर वो डूब गया, क्योंकि ड्रामा में वो नूंद नहीं था कि नूंद क्या था, नल और नील ने जब नाम लिखा तो वो तरेंगा। तो इसलिए बाबा ही बोलते हैं कि ड्रामा में हर एक आत्मा का जो पार्ट है वो नूंदा हुआ है उसी अनुसार वो प्ले करता है, वो भी सक्सेस होता है। तो ये पहली बात बाबा ने बताई कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए ड्रामा में जो नूंद है वही मुझे कार्य प्ले करना पड़ता है। दूसरे जवाब में बताया कि ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट फिक्स है, एक्यूरेट बजाते, उसमें उसका कोई दोष नहीं, निर्दोष है। तो इस पर कई बच्चों का ये विचार चलता है कि बाबा आपके यज्ञ में इतने साल से भाई बहनी चल रही है और इनकी बुद्धि को आप परिवर्तन क्यों नहीं करते, इसकी बुद्धि का परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो उसके जो उसके प्रश्न में बाबा ने जवाब दिया कि हर एक एक्टर का जो पार्ट है वो एक्यूरेट है, उसमें भगवान भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे शास्त्र में, क्योंकि बाबा ने शास्त्र की बहुत बातें बताई है, तो जैसे रावण के बारे में कि रावण एक क्या ब्राह्मण पुत्र था यानी ब्राह्मण जाति का था और वो बलशाली भी था, शक्तिशाली भी था और वो बुद्धिमान भी था, ऐसा नहीं, उसको बहुत बुद्धि थी, उनको पंडित भी था वो, और वो शिव भक्त भी था क्योंकि उनके जीवन की दिनचर्या वो शिव की पूजा अर्चना किए बगैर वो अपनी दिनचर्या चालू नहीं करता था, यानी इतनी उस पर भावना भी थी उसकी शिव पर। और वो लंका का राजा भी था कि और उसके पास सब सुख सुविधा थी, वैभव था, और उसके राजमहल में मंदोदरी के साथ अनेक सुंदर स्त्रियां भी थी, वो उनकी पत्नी के रूप में उसके महल में रहती थी। सब इतना होते हुए भी यानी वो कहता शक्तिशाली भी था, शिव भक्त भी था, पंडित भी था, ज्ञान भी था, शक्तिशाली भी था, सुंदर स्त्रियां भी थी पत्नी के रूप में उनके राजमहल में, लेकिन उन्हें सीता का हरण क्यों किया, क्योंकि सीता माता का उसने हरण किया और उसने अपने लंका में ले गए और उसको वो मुझे पति रूप में स्वीकार कर, ऐसा उसको फोर्स करने लगे रावण। तो उस समय उनके जो लंका में जो नाना थे उसके, उन्हें बहुत उसको समझाया कि ये ऐसा ठीक करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो सीता है, सीता माता है, वो लक्ष्मी का अवतार है और प्रभु रामचंद्र विष्णु का अवतार है, तो आप उसकी सीता माता उसको वापस कर दो और उसके शरण में चले जाओ, तो इसमें आपकी भलाई है, आपकी लंकाएं बच जाएंगी। यही बात मंदोदरी ने भी उसको बताया, क्योंकि मंदोदरी की बात तो मानता था क्योंकि उसको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देता था, मगर उसने भी बताया, उसकी बात नहीं सुनी उन्होंने, बाकी उनके मंत्री लोग थे उन्होंने ही बताया, तो उसकी बात उनने सुनी नहीं। तो जितना सब होते हुए भी उनने बात की सुनी नहीं, क्योंकि वो बुद्धिमान भी था, ऐसा ये नहीं था, क्योंकि बुद्धि का वो यानी वापर उपयोग भी कर सकता था वो। तो इसका कारण बाबा ने बताया कि हर एक आत्मा का जो पार्ट है एक्यूरेट है, जिसको जो पार्ट मिला है वो पार्ट वो बजाएंगे, उसमें वो निर्दोष है, उसमें उसकी कोई गलती है ही नहीं। तो ये दूसरा जवाब दिया बाबा ने, इसलिए अपन तो इसलिए नहीं पार्ट बजाने वाले कि अपन कई कई किसी आत्मा के जो पार्ट देखते देखकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कहा ये लोग ऐसे पार्ट क्यों बजा रहे बा, क्योंकि बाबा के बच्चे है इतना वो सब कुछ ज्ञान वो करते है, बुरली सुनती है नहीं वैसे हम सोच नहीं सकते लेकिन उसके लिए उनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए ये सोच सकती है। तो इस प्रकार बाबा ने उसको निर्दोष ये किया कि वो निर्दोष घोषित किया कि वो निर्दोष है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है और अपन उस पर जो ब्लेम लगाती है नहीं लगाना चाहिए, जिनको जो पार्ट मिला है वो पार्ट बजाएंगे और समय अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दूसरा जवाब। अभी तीसरा प्रश्न का जवाब बाबा ने दिया कि यज्ञ में इतने विघ्न पड़ते हैं, तो विघ्न बाबा समर्थ होते विघ्न पड़ते, क्योंकि ये असुर वृत्ति के लोग है वो विघ्न पाड़ेंगे, हाँ विघ्न डालेंगे, विघ्न डालेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा। तो तो देखो इतना सारे दुनिया का विनाश होना है तो उसके लिए कुछ धरती पर पाप कर्म ही होंगे, तभी तो विनाश होगा ना। क्योंकि जब तब प्रकृति को क्रोध आ जाएगा और फिर वो विनाश लीला अपनी चालू कर देंगी ना, नहीं तो सभी लोग अच्छे पाठ पर जाएंगे, कोई गलतियां नहीं करे, पुण्य पुण्य करते रहेंगे तो प्रकृति को तो क्रोध भी नहीं आएगा ना, तो फिर अपना सत्यु के राज्य कैसा आएगा। तो सत्यु की स्थापना के लिए हाँ ये विनाश भी जरूरी है और असुरों के विघ्न पड़ने जरूरी है। तो जैसे अपने शुरू से लेकर यज्ञ की हिस्ट्री में हाँ पाप का घड़ा जल्दी भरेगा और जल्दी सत्यु गाएंगे ना फिर। तो यज्ञ में देखा जाए यज्ञ हिस्ट्री में तो शुरू से लेकर अभी तक विघ्न पड़ती आ रही है। जैसे शुरू में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लेकर के इस यज्ञ यानी उसके मुख द्वारा ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान दिया और उससे यज्ञ की स्थापना होगी। लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा ने अपने घर में सत्संग शुरू कर दिया और उस सत्संग में बहुत सारे भाई बहने लोग आते थे और सत्संग सुनते थे। लेकिन कुछ समय के बाद शिव बाबा ने यानी प्योरिटी की बात बताई तो उस सत्संग में आने वाले जो कई लोग थे उनके मन में एक आसुरी वृत्ति निर्माण हुई और उन्होंने विरोध किया, फिर यज्ञ उस सत्संग में आना बंद कर दिया उन्होंने। और जो बाकी उनके घर के लोग जाते थे सत्संग में तो उनको ही उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था कि जाना नहीं, लेकिन वो मानते नहीं थे, जबरदस्ती जाते थे। तो फिर उस समय क्या गया, ये अपने दादियाँ है और उनको उनके घर के लोग क्या बहुत अत्याचार करते थे उनके ऊपर, घर में कमरे में बंद करके रखते थे, उसको जाने नहीं देते थे, तो भी वो जाने का प्रयास करते थे। तो फिर वो विरोधी लोग और उसका विरोध बढ़ गया, तो जिस स्थान पर वो सत्संग चलता था उसको ही उसने वो मकान को ही जला दिया था। यानी धीरे धीरे उनका ऐसा जो आसुरी वृत्ति थी वो बढ़ती गई और विघ्न डालते गए वो लोग, तो इस प्रकार से विघ्न पड़ते गए उसमें। बाद में भारत में आ गया वो अपना यज्ञ, तो भारत में कम विघ्न नहीं पड़े क्योंकि सबसे पहले वो बेगरी पाट, कुछ दिन के बाद बेगरी पाट आया, बेगरी पाट चला, तो उस समय कई लोग सहयोग करते थे। तो बाकी ये आसुरी वृत्ति के लोग थे तो उनका कहना था यज्ञ बंद होना चाहिए इन लोगों का, यदि उनको सहयोग भी किसी ने दिया नहीं तो यज्ञ चलेगा कैसा। तो सहयोग देने वाले को भी उन्होंने मना किया था, उनको सहयोग देने के लिए ये कर रहे थे आप सहयोग नहीं दो, तो इस प्रकार ये विघ्न पड़ते गए। बाद में हापुड़ का हंगामा, वो भी यज्ञ इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भी कितने विघ्न पड़े क्योंकि ये लोकल लोग थे, उनका कहना था कि ये संस्था यहाँ से हट जानी चाहिए, यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने जहाँ पर सत्संग चलता था उस सेंटर का उन्होंने दीवार भी तोड़ी थी, वो दरवाजा भी तोड़ दिया था उन लोगों ने और बहुत हंगामा मचाया था। लाइट पानी भी बंद कर दिया था कि लाइट पानी बंद हो जाएगा, पानी नहीं मिले तो फिर ये लोग कैसे सत्संग में आएंगे या कैसे रहेंगे लोग इस मकान में, वो यहाँ से भाग जाएंगे, तो ऐसा उनका प्लान था। और कई लोग अपने थे पीके लोग, उनको उसने मार झगड़ा भी करते थे, मारपीट भी करते थे उनके साथ। एक भाई को तो ट्रक के नीचे भी उसने दबा दिया था, ऐसी हुआ बोलती। और एक भाई को तो निर्वस्त्र करके उनके कपड़े भी उतार देते, यानी बहुत तकलीफ दे रहे थे वो लोग। और एक भाई के ऊपर ऐसा जिंदा सांप भी सांप छोड़ दिया था। तो इस प्रकार यज्ञ में शुरू से लेकर विघ्न पड़ते गए और अभी भी पड़ रहे हैं, इसलिए बाकी लोग का तो यज्ञ में ऐसे विघ्न पड़ते गए। तो इसलिए शास्त्र में एक बात आती है, मुझे याद आ रही है कि जैसे कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया और उसी युद्ध में कौरव सहित उनके सब महारथी मारे गए और लास्ट में हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को घोषित किया, तो उसका राज्याभिषेक हो रहा था युधिष्ठिर का। तो उस धूमधाम से सब राज्याभिषेक कर रहे थे क्योंकि नया राजा बना था युधिष्ठिर। तो उसको अग्र पूजा के लिए उसके श्री कृष्ण का सिलेक्शन किया सभी के सहयोग से। तो उस सभा में कौन थे, शिशुपाल भी थे। तो उसको ये ठीक नहीं लगा, उसको लगा इसको अग्र पूज्य का अधिकार नहीं देना चाहिए, इसलिए उसने क्या गाली देना चालू कर दिया कि ये गांव का गावड़ा है, ये पापी है, ये ठीक नहीं है, तो इसको ये मक्खन चोर है, तो इसको चोरी करता है, मक्खन चोर नहीं चोरी करता है, ये चोर है, तो इसको वो अधिकार नहीं देना चाहिए। तो फिर वो जो शिशुपाल की गाली देना चालू था तो एकदम दाऊ भैया को गुस्सा आ गया कि उसको लगा श्री कृष्ण को इतने गालियां दे रहा, तो उसने अपना गदा निकाला और बोला कि एकदम शांत हो जाओ आप, नहीं तो आपको यम लोग हम पहुंचा देंगे। तो भी बाद में कृष्ण ने बोला उसको बोलने दो वो बोल रहा था बोलने दो उसको, हाँ। तो फिर और वो देता रहा गाली। बाद में भीम को बहुत गुस्सा आ गया, वो उठ गया कि उसने भी उसको धमकी दी आप शांत हो जाओ नहीं तो आपको भी मैं यम सदनवन में पहुंचा दूंगा। तो श्री कृष्ण ने उनको भी शांत किया, आप भी चुप हो जाओ, उसको दे बोलने दो, क्योंकि जब उनका वो सौ गाली देंगा, सौ गाली तक हो जाएंगी तब उसका अंत हो जाएगा, इसलिए बोलने दो उसको। तो और भी वो भड़क गया, गाली देने के लिए लग गया शिशुपाल। तो बाद में अर्जुन को भी ये नहीं हुआ क्या करे, हाँ उसका भी पारा गर्म हो गया, फिर वो भी अपना धनुष से लेकर खड़ा हो गया कि इसको अभी सिर उसका अलग कर देता हूँ मैं। तो फिर कृष्ण ने उसको भी शांत कर दिया और बाद में श्री कृष्ण ने उसको शिशुपाल को बोला कि अभी भी समय है, यदि आप शांत हो जाओ नहीं तो सौ गाली तक हम आपको क्षमा करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। तो भी उसकी बात नहीं माने और स्पीड से और गालियां देना चालू कर दिया। तो फिर 99 गालियां दिया उसने, बाद में एक ही गाली बची थी। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको ये सलाह दिया कि अभी शांत हो जाओ, तो भी नहीं माना और ज्यादा ही क्रोधित होकर वो गाली देना चालू कर दिया। तो लास्ट में श्री कृष्ण ने सुदर्शन निकाला और उसका विनाश कर दिया, यानी उसको पहुंचा दिया। तो इस प्रकार यज्ञ में भी अपन को लगता है ना कि इतना बड़ा भगवान समर्थ है, लेकिन असुर लोग विघ्न डालती है, लेकिन जब उनका समय आ जाएगा तो प्रकृति भी ऐसी क्रोधित हो जाएंगी और क्रोधित हो करके, क्योंकि इतना बड़ा मनुष्य सृष्टि का विनाश करना है तो उतना पाप भी चाहिए ना, तभी तो इस यानी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए बाबा बोलते पाप का घड़ा भरना है, इसलिए असुर लोग विघ्न डालती है। तो ये तीसरी वो बात बाबा ने जवाब दे दिया। तो इस प्रकार ये एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट की तीन बातें। तो नहीं आज बाबा ने शास्त्र की बातें बताई, क्योंकि तो जो भी शास्त्र में बात आई उसको कनेक्ट है, तो इस पर हमने चर्चा की। अभी आगे देखेंगे हम अभी क्या करना है। तो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, बाद में बाबा ने वरदान में बताया है कि ये निर्बल आत्मा है, उनको आप ज्ञान तो देते हैं, ज्ञान दाता के साथ साथ क्या करना है, उसको शक्ति दाता बन, उसको फोर्स भरना है उसके अंदर, और फोर्स भर के उनको जंप दिलाओ बोलते, यानी उनको शक्तिशाली बनाओ। तो इसलिए बाबा ने बोला कि आप बच्चे पूर्वज हो, आप पूर्वज आत्मा होने के कारण आपकी जिम्मेवारी है कि निर्बल आत्मा है उसको बलशाली बनाओ, क्योंकि आज संसार में देखा जाए तो चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है, घर घर में कलह क्लेश है, अशांति है, तो उसके कारण लोग दुखी है, अशांत है, हाँ लॉकडाउन है, और ये बड़ी बड़ी बीमारी आ रही, अचानक बीमारी आती है तो बीमारी के कारण लोग घबरा गए है, और कई लोग तो भगवान को अभी भी ढूंढ रहे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए प्यासी है तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने बोला है कि आप पूर्वज आत्मा हो तो आपको क्या करना है, अभी जो दुखी आत्मा है उनका दुख क्या करना है, आपको दूर करना है। तो जो अशांत आत्मा है उसको शांति का दान दे करके उनकी अशांति दूर करना है। जो आत्मा अचानक बीमारी के कारण घबरा गई, अचानक बीमारी आती है तो बीमार के कारण कई तड़प रहे तो उसकी तड़पन दूर करनी है, और कई भगवान के प्राप्ति के लिए भटक रहे कि भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए, इसलिए सत्संग में इधर उधर चारों तरफ हर एक धर्म पंथ में जा रहे हैं, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही कुछ भी, और कुछ सुख शांति भी नहीं मिल रही। तो ऐसे आत्मा को भगवान का परिचय दो और उसकी भटकन दूर करो, बोलते बाबा। मगर ये सभी बातें करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर शक्ति चाहिए ना, क्योंकि बाबा बोलते हैं आप शक्तिशाली बनेंगे तो उनको शक्ति दे सकेंगे। यदि हमारे अंदर शक्ति का स्टॉक भी जमा नहीं रहेगा तो हम उन लोगों को कुछ दे नहीं पाएंगे ना। इसलिए बाबा ने बोला कि निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने अंदर शक्तियाँ धारण करो। तो जैसे अष्ट शक्ति है तो वो अपने जीवन में हम कैसे धारण करें, इस पर थोड़ा हम देखेंगे। तो पहली शक्ति कौन सी अष्ट शक्तियों में, पहली है यानी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो उसका सिंबल क्या है, कछुआ दिखाया है कि जैसे बाहर के यानी बहुत संकट आता है तो कछुआ क्या करता है, पूरा अपने इंद्रिय वो कवच के नीचे समेट लेता है, उससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो वैसे बाबा ने बताया कि यदि आप यानी वो शक्ति को धारण करना है तो व्यर्थ हम व्यर्थ चिंतन परचिंतन प्रदर्शन करते रहते हैं, यदि उनका ऐसा विस्तार भी होता रहे तो वो शक्ति हमारे अंदर नहीं आएंगी और यानी समस्या पैदा हो जाएंगी। तो हमें उसको विस्तार नहीं करना है तो उसको असंकीर्ण करना है, व्यर्थ संकल्प प्रदर्शन परचिंतन को, तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएंगी। दूसरी है समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति में क्या दिखाया है, वो बिस्तर और वो पेटी दिखाई है यानी समेटना है। तो बाबा ने आज मीठे बच्चे में बोला है ना कि इस विनाशी दुनिया से अपना बुद्धिदेव हटा कर बाबा को बाबा में लगाओ। तो हमें क्या करना है, जैसा व्यर्थ बातें है व्यर्थ बातों को एकदम फुल स्टॉप करना है। और इस दुनिया में हमें एक मेहमान है, तो मेहमान समझने से क्या हो जाएगा, इस दुनिया का जिस यानी व्यक्ति वस्तु वैभव का जो आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो अपन को मेहमान समझो और बुद्धि क्या करना है, विनाशी दुनिया से हटा कर बाबा में लगानी है, तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएंगी। तीसरी शक्ति है सन शक्ति और समाने की शक्ति, यानी सन शक्ति तीसरी और चौथी समाने की शक्ति। एक दो शक्ति एक दूसरे से पूरक है। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, सहन तो कर लेते, कभी कुछ बात हो गई तो सहन कर लेते, लेकिन वो समाते नहीं तो वो बात क्या है, वहाँ से स्टॉप नहीं होती और बिगड़ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल, सास और बहू है, उनका झगड़ा होता है तो सास और बहू को बहुत गाली देती है, देती रहती है, तो वो बेचारे सहन करती है, कुछ बोलती नहीं, तो उस समय क्या होता है, वो समस्या मिट जाती है थोड़े समय के लिए, क्योंकि दूसरे दिन वो बहू क्या करती है, पड़ोसी को बता देती है कि मेरे सास ने ऐसा ऐसा बोला, उसका परिचिंतन उसके सामने कर देती है। तो फिर वो पड़ोसी सास के बताएंगी कि आपकी बहू ने मेरे को ऐसा ऐसा बोलना, तो फिर वो सास क्या करेंगी, 20 नाखून का जोर लगाकर फिर दूसरे दिन उसके साथ झगड़ा करेंगी और तो समस्या हल नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति हमारे अंदर धारण करना है, तो हमें सहन भी करना है और उनके साथ साथ वो बात हमारे अंदर समाने भी है, तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएंगी। बाद में पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। तो हमें परखना है हर एक व्यक्ति को, यानी परखना आना चाहिए। जैसे कई कई लोग कभी हमसे बात नहीं करते और कभी कभी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, तो समझ आ जाएगा इतना मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा, क्योंकि उनका ही कुछ दाल में काला है या कोई स्वार्थ प्रत्यक्ष करना है उनका, इसलिए करता है। जैसे कभी कभी हम संग दोष में आ जाती है, तो वो जो संग दोष वाले व्यक्ति रहते हैं वो अपने पार्टी में लोग आने चाहिए, इसलिए वो ढूंढते ही रहते हैं कोई एक आंधा व्यक्ति मिल जाए तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, अपने महिमा करेंगे। बाद में कभी कभी हमें लगता है ना कि ये व्यक्ति कभी बोलता है ना, आप इतनी महिमा क्यों कर रहे थे, इसकी बात को सुननी चाहिए बा, तो इस प्रकार हम संग दोष में चले जाते हैं। तो वो परखने की भी बाबा बोलते शक्ति चाहिए आपके अंदर। जैसा मिसाल दिया है, जैसा हंस है वो भी क्या करते, पानी और दूध उसको बराबर पानी नहीं पीता, उसमें से दूध दूध निकाल लेता है, बाबा बताते हैं। और जैसा कंकड़ और पत्थर उनसे मोती निकालती है, तो मोती भी चूकता है, कंकड़ पत्थर को नहीं निकालता है। वैसे हमें भी यानी परख करके अच्छे लोगों की भी संगत करनी और संग दोष में नहीं फंसना है, तो वह निर्णय शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, परख शक्ति आ जाएंगी। अगले निर्णय शक्ति, तो बाबा निर्णय शक्ति के लिए सिंबल क्या दिखाया है, हाँ तराजू दिखाया। जैसे तराजू का किसी चीज का अपन वेट करते हैं, वजन करती है, तो उसमें जब दोनों पलटे समान रहती है और उसका जो ऊपर का काटा है जो एकाग्र हो जाता है, उस समय वो वेट बराबर हो जाता है उसका। तो वैसा भी हमें भी क्या करना है, जैसी कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, तो हम मन बुद्धि एकाग्र करने, हमारी मन बुद्धि की एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। जब मन बुद्धि एकाग्र रहती है और उस समय हम निर्णय लेते हैं तो वो कार्य क्या होता है हमारा जी, तो कार्य हमारा सफल होते, उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो कार्य में सफलता मिलने के लिए हमें क्या, एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। तो मन की एकाग्रता से हम क्या कर सकते हैं, वो निर्णय शक्ति अपने अंदर धारण कर सकती है। बाद में अगली कौन सी, कितने हो गए, हाँ हाँ अभी सामना छह हो गया, सामना करने की और सहयोग की शक्ति। अभी सामना करने की शक्ति, तो जो सामना करने की शक्ति वो अपने अंदर समान है, तो उसके लिए हमें वो इस बात का ध्यान देना है कौन सी वो किस समय कौन सी बात करनी चाहिए, नहीं तो किसका सामना करना, यानी सहन कब करना है और सामना कब करना है, ये हमें आना चाहिए। नहीं तो जिस समझो दो व्यक्ति है, दोनों का स्वभाव संस्कार में टकरा हो रहा है, तो उस समय क्या करना है, हमें सामना नहीं करना है, तो उस समय हमें सहन करना है। सहन करेंगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, नहीं तो और बात बिगड़ेंगी। और जैसी और जो माया है, माया के साथ क्या करना है, हमें सामना करना है। तो समय पर उनको यूज करना आना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, यानी वो और भी विघ्न बढ़ जाएंगे। जैसा इस पर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसा एक दुकानदार है, उनके पास समझो रात का समय है, दुकान में अकेला है, उसके दुकान में कोई चोर आ जाती है और वो बोलती है कि आपका जो भी माल है हमको दे दो, एक दिन की कमाई है। यदि उस समय अपने उसने नहीं दिया तो वो क्या हो जाएंगे, हाथ पे करनी पड़ेगी, उसकी जान भी जा सकती है उस समय। तो उस समय यदि दे दिया एक दिन की कमाई, तो उसका जान तो बच सकता है ना, फिर दूसरे दिन वो तो बाकी जीवन भर में तो वो पैसा कमा सकता है। तो जिस पर के समय अनुसार हमें क्या करना ये आना चाहिए। तो इस प्रकार वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएंगी, समाने की शक्ति। बाद में अगली कौन थी, सहयोग शक्ति। हमें सहयोग देना है, तो सहयोग शक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना, हाँ सहयोग देना। जैसे हमारे चिमन भाई जी हर एक को सहयोग देते, जो भी बीमार है उसको पता चलते बराबर बिल्कुल हॉस्पिटल में हाजिर हो जाते और उसकी सेवा में लग जाती है, ऐसे सहयोग करते। इसलिए हाँ, तो इसलिए बाबा भी बोलते हैं कि जिनके अंदर जो विशेषता है, जिसको भाषण करने की विशेषता है, अगर अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं, उन्होंने बाकी लोगों को भाषण दो, अच्छा ज्ञान सुनाओ और उन लोगों को बाबा के बच्चे बनाओ, तो ऐसे यज्ञ में सहयोग दे सकते हैं। जिनके अंदर चित्रकला, हमारे निकलेश भाई जी अच्छे से पेंट चित्र निकाल सकते हैं, तो जब जरूरत है यज्ञ में कई बार समझे चित्र निकालने की, तो वो चित्र निकाल के दे सकते हैं, तो यज्ञ में सहयोग हो जाता है। जिनके पास धन है वो धन की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर हम सहयोग दे करके अपने सहयोग शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आठ अष्ट शक्तियाँ है, हम अपने अंदर धारण करके बाकी आत्माओं को सेवा कर सकते हैं, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना सकते हैं। और अभी लास्ट पॉइंट है कि बाबा ने स्लोगन में बताया, क्या स्लोगन में बताया, हाँ साक्षी, क्योंकि ड्रामा का हर खेल साक्षी होकर देखो तो क्या हो जाएंगे, हम सेफ भी हो जाएंगे और मजा भी आएंगे बोलते। तो ड्रामा में जो भी सीन आता है उसको साक्षी होकर देखना है, तो सुरक्षित रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। वो दिन इंग्लिश क्लास में सचिन भाई जी ने बताया था कि हर एक बात नित्य यानी होती है, उसमें साक्षी होकर देखना। उसके लिए उसने तीन मिसाल दी थी, एक पेड़ का और पंछी का। जैसे पेड़ पर पंछी बैठते उड़ते हैं तो हम साक्षी होकर देख रहे, आप बैठ रहे उड़ रहे है तो अनित्य है, बैठेंगे उड़ेंगे। दूसरी बात बताई थी बादल की, जब बादल आ रहे जा रहे है तो उसको हमें साक्षी होकर देखना है। तीसरी नदी का पानी, जैसे नदी में एक सेकंड के पहले जो पानी था वो बाद में पानी नहीं रहेगा, आ रहा जा रहा है, तो ऐसी हर एक चीज को हमने साक्षी होकर देखना है। जैसा जीवन में कभी दुख ही दुख आता है तो दुख एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि दुख के बाद क्या होता है, सुख आ जाता है। और जीवन में कभी सुख भी है, सुख भी सुख नहीं रहता, सुख के बाद दुख आता है, तो ऐसा बदलता रहता है। तो हमें हर एक सीन को क्या करना है, उसको साक्षी होकर देखना है, दुखी नहीं होना है तो वो बदल जाएंगे। और वो हर एक जो सीन आता है उसको खेल समझेंगे और मजा आ जाएंगे और हम सुरक्षित रह जाएंगे। तो इस प्रकार ये तो साक्षी देखो, हर एक जो भी ड्रामा में सीन सामने आते तो हर एक को साक्षी होकर देख सकते, तो उससे हमारी सुरक्षा हो जाएंगी और हम मजा आएगा देखने में। तो इस प्रकार ये हमने 3 पॉइंट निकाले थे। तो हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे पहले विघन की साकार मुरली में बताया था कि बाबा इतने समर्थ होते हुए भी यज्ञ में विघ्न क्यों आएंगे, यानी असुरों के विघ्न क्यों पड़ते। तो उसके लिए बाबा ने ये प्रश्न के 3 जवाब दे दिए, क्योंकि ड्रामा में बाबा ही बंधा हुआ है, हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है वो बजाएंगा, और यज्ञ में विघ्न पड़ रहे क्योंकि पाप का घड़ा भरना, ये 3 बातें होगी बताए बाबा ने जवाब में। और दूसरा पॉइंट है निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, तो हमें वो शक्ति हमारे अंदर धारण करेंगे तब हम दूसरे को दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था हर एक सीन को, जो भी ड्रामा का सीन सामने आता है उसको साक्षी होकर देखो, तो क्या हो जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे और मजा भी आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।